कल रात जब अरमान ने नव्यांशी को घर से जाने के लिए कहा था, तब उसके मुंह से गलती से निकल गया था कि वो अरमान के साथ रहना चाहती है। हालांकि नव्यांशी ने तुरंत संभालते हुए बात को सही भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद से ही अरमान और उसके बीच में एक अजीब सी दूरी आ गई थी। दोनों एक दूसरे के सामने जाने से बच रहे थे। अगला दिन लगभग आधा बीत चुका था और अरमान एक पल भी नव्यांशी के सामने नहीं आया था। नव्यांशी का अपने काम में मन नहीं लग रहा था। उसने मनन के जरिए अरमान से बात करनी चाही, लेकिन उल्टा मनन ने उसे ही फंसा दिया था। उसने जूस के ग्लास के साथ नव्यांशी को जबरदस्ती अरमान के वर्कस्पेस में भेज दिया था। नव्यांशी बिल्कुल धीमे कदमों से चलकर अंदर गई। उसने देखा अरमान काम करने में पूरी तरह खोया हुआ था। उसका ध्यान तक नव्यांशी की तरफ नहीं गया। काम करते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है, नव्यांशी मन ही मन बड़बड़ाई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो खोए हुए अंदाज में अरमान की तरफ देखने लगी थी। इस बीच अरमान का ध्यान उसकी तरफ गया। अरमान हल्का सा खांसा, तब नव्यांशी अपने ख्यालों से बाहर आई। वो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई थी, मनन ने जबरदस्ती भेज दिया। मेरा तुम्हें डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था, नव्यांशी ने जल्दी से अपनी सफाली में कहा। नव्यांशी अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी, क्योंकि कल अरमान ने उसे साफ मना किया था कि वो उसके वर्कस्पेस में नहीं आएगी। तो वहां क्यों खड़ी हो, तुम अंदर आ सकती हो, अरमान ने शांत लहजे में कहा। मुझे लगा कि कल के बाद तुम नाराज हो और मुझे यहां नहीं आने दोगे, बस इसीलिए बाहर खड़ी हुई थी, नव्यांशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। और तुम कब से दूसरों की सुनने लग गई, अरमान ने तंज भरे लहजे में कहा और फिर सिर हिलाकर धीरे से बोला, कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाली हो, तुमने कुछ कहा, नव्यांशी अरमान को घूरते हुए बोली। बोलते हुए उसने जूस का ग्लास उसके सामने रख दिया था। मैं यही कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें मेरी एब्सेंस में यहां आने से मना किया था, बाकी तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जा सकती हो, अरमान ने जवाब दिया। अरमान ने एक बार भी नव्यांशी की तरफ नहीं देखा और उसके पास आते ही उसने अपना ध्यान लैपटॉप के अंदर लगा दिया था। उसके कहने के बावजूद नव्यांशी वहां पर खड़ी रही। उसने सपाट लहजे में पूछा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, देखो नव्यांशी, डिस्टर्ब करना बंद करो। और मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा, तुम्हें देख रहा होगा कि मैं अपने काम में बिजी हूं, अरमान ने इस बार जानबूझकर थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया। नव्यांशी ने उसे देखकर मुंह बनाया और तुरंत बाहर जाने लगी। वहीं जैसे ही नव्यांशी दूसरी तरफ पलटी, अरमान उसे पीछे से देखने लगा। जब नव्यांशी कमरे के अंदर आई थी, तब वो उसे इग्नोर करने का दिखावा जरूर कर रहा था, लेकिन हाँ, बीच बीच में उसे नजरें चुराकर देख भी रहा था। नव्यांशी दरवाजे के पास आकर रुकी और वापस अरमान की तरफ पलटी तो उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन इस बार उसकी चोरी पकड़ी गई थी। हालांकि नव्यांशी ने उसे डांटने के लिए ही उसकी तरफ देखा था, लेकिन जब उसने देखा कि अरमान की नजरें उसी की तरफ हैं, तो वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई थी। जैसे ही नव्यांशी कमरे से बाहर आई, उसके होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, इसका मतलब वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा, बस अपनी फीलिंग से भाग रहा है। अगर सच में तुम मुझे लेकर कुछ फील करते हो अरमान, तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। नव्यांशी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अरमान के वर्कस्पेस के आगे खड़ी खुद से बड़बड़ा रही थी। इस बीच मनन की नज़र उसके ऊपर गई। रोहन, मुझे लगता है नव्यांशी पागल हो गई है, हमें अरमान को कहना चाहिए कि नव्यांशी को डॉक्टर को दिखाए, मनन ने नव्यांशी को घूरते हुए रोहन से कहा। रोहन ने एक नज़र नव्यांशी की तरफ देखा और फिर बाद में मनन की तरफ। उसने हल्के से सिर हिला दिया था और वापस अपने कामों में बिजी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ शिवांशा वेद के मोबाइल में एक मैसेज देखने के बाद काफ़ी परेशान हो गई थी। ऊपर से उसने वेद की शर्ट के पिछले हिस्से पर लिपस्टिक का मार्क भी देखा था। वेद ने शिवांशा को यही बताया था कि वो कल रात काम में फंसा हुआ था, जबकि उसे मैसेज से ये लग रहा था कि वो कल रात किसी के साथ था और वो शख्स कोई लड़की थी। ऊपर से आने के बाद वेद उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। हालांकि ये वेद की थकान की वजह से ऐसा था, पर शिवांशा को यही लग रहा था कि वेद उसे इग्नोर कर रहा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल चलने लगे थे। शिवांशा जब नहाकर कमरे से बाहर निकली तो वेद सो चुका था। अच्छा तरीका है मुझसे बचने का, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो मुझे बता क्यों नहीं देते, और कौन सा मैं आपको ज़बरदस्ती अपने साथ रहने के लिए बोल रही हूँ, शिवांशा ने मुंह बनाकर कहा। शिवांशा का पूरा ध्यान वेद के ऊपर था। उसका ध्यान तब टूटा जब उसने कमरे पर किसी की दस्तक सुनी। रानी बाहर खड़ी थी और अंदर आने के लिए दरवाज़ा खटखटा रही थी। शिवांशा तुरंत अपने ख्यालों से बाहर निकली और रानी के पास पहुंची। उसे लगा रानी ब्रेकफास्ट के लिए उसे बुलाने के लिए आई है, लेकिन शिवांशा का कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, शिवांशा बोली। हाँ, लेकिन वेद भैया, मेरा मतलब है, क्या वो सो गए हैं? मुझे लगा कि वो सबके साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, खासकर तब जब मिस बंसल नीचे आई हैं। रानी ने जवाब दिया। वो झुककर कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी शिवांशा उसके सामने आ गई थी। मिस बंसल का नाम शिवांशा ने पहले भी वेद के मुँह से सुना था। उनका पूरा नाम मिहिका बंसल था, जिसके साथ वेद की शादी होने वाली थी। और वो अचानक यहाँ पर क्यों आई हैं? शिवांशा ने तुरंत पूछा। अक्षत भैया उनके यहाँ काम करते हैं ना, तो उन्हें वहाँ काम करते हुए थोड़ा वक्त बीत गया है। हो सकता है उसी के बारे में कुछ बताने के लिए आई हूँ। वैसे भी भैया सुबह ही ज़्यादातर घर पर मिलते हैं और उन्हें उनसे ऑफिस में नहीं मिलना होगा, रानी ने जवाब दिया। रानी की बातों से यही लग रहा था कि वो शिवांशा को वेद को जगाने के लिए कह रही है। शायद यही वजह थी कि वो सिर्फ ब्रेकफास्ट का बोलने के बजाय सारी बातें उसे बता रही थी। तो क्या आप भैया को जगा देंगी? रानी हिचकिचाते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, वो बाद में भी आ सकती हैं, और वेद पूरी रात बाहर थे, वो ठीक से सोए नहीं। मैं उन्हें नहीं जगाने वाली हूँ, वो बहुत थके हुए हैं, शिवांशा ने वेद को जगाने से साफ मना कर दिया था। ठीक है, तो फिर आप नीचे आ जाइए, रानी मायूसी से बोली और फिर वहाँ से चली गई। शिवांशा ने एक नज़र वेद की तरफ देखा और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से नीचे आ गई थी। मिहिका पहले से ही बाकी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि सब उनसे काफ़ी घुले मिले थे और ब्रेकफास्ट टेबल पर सबके बातें करने और हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा अब तक वेद ने नव्यांशी को माफ़ कर दिया होगा और उसकी सज़ा छोटी रही होगी, लेकिन उसने अभी तक उसे घर नहीं बुलाया। वेद कई बार सच में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, मिहिका ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, और आप यकीन नहीं करेंगी कि वापस बुलाना तो दूर की बात है, वो तो नवी के साथ कॉल पर भी उसके काम की अपडेट लेने के लिए बात करते हैं, वंश ने हंसकर जवाब दिया। शिवांशा दूर से उन्हें देख रही थी। वंश ने कभी भी आज तक उससे ठीक से बात नहीं की थी, हंसना तो दूर की बात है, वो उस पर शक ना करे यही शिवांशा के लिए बड़ी बात थी। शिवांशा ने उसे कभी आराध्या के साथ भी इतना हंसकर और खुलकर बातें करते हुए नहीं देखा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो मिहिका के साथ काफी कंफर्टेबल है, सिर्फ वंश ही नहीं अक्षत भी। शिवांशा ने एक नज़र मिहिका की तरफ डाली, शायद सब उसकी बिल्कुल सही तारीफ करते थे। वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, जैसा वेद हमेशा उसे बनने की सलाह देता था।
अगर मैं इनके बीच में गई तो फिर से ये सब फॉर्मल हो जाएंगे और मेरे चक्कर में एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करेंगी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, शिवांशा ने मन ही मन मायूसी से कहा और दूसरी तरफ जाने के लिए पलट गई। तभी आराध्या ने उसे देख लिया। अरे भाभी, आप वापस क्यों जा रही हैं? आइए ना, हमें ब्रेकफास्ट में ज्वाइन कीजिए, वैसे भी आप काफ़ी कम बार हमारे साथ नाश्ता करती हैं, आराध्या ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, तो शिवांशा को उनकी तरफ देखना ही पड़ा। मिहिका ने देखा शिवांशा अकेली खड़ी हुई थी, जबकि रामी वेद को भी बुलाने के लिए गई थी। उसके मुँह से अचानक निकला, वेद नहीं आया? हाँ, वो कल पूरी रात बाहर थे और अब सो रहे हैं, मैंने उठाना सही नहीं समझा, शिवांशा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वो डाइनिंग टेबल पर जाकर उनके पास बैठ गई थी। बिल्कुल सही किया, वो ठीक से नींद नहीं ले पाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, मिहिका बोली। मिहिका की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो शिवांशा से ज्यादा वेद को जानती है। शिवांशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हल्के से सिर हिला दिया था। जहां शिवांशा खाना खाते हुए बार बार मिहिका को देख रही थी, तो मिहिका की नजरें भी उसी पर थीं। शिवांशा को देखते हुए मिहिका ने मन ही मन कहा, वेद को सादगी से प्यार है और शायद यही वजह है कि उसे शिवांशा से प्यार हो गया। अचानक मिहिका के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई थी। जहां मिहिका शिवांशा को देखकर ये सोच रही थी कि वेद ने दिखावे और परफेक्शन से अलग सादगी को चुना है, तो वहीं शिवांशा को मन ही मन ये लग रहा था कि मिहिका जैसी परफेक्ट लड़की ही वेद जैसे इंसान के लिए सही लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मिहिका ने एक फाइल शिवांशा को देते हुए कहा, ये वेद को दे देना, मैंने अक्षत से कहा था कि वो वेद को इसे दे दे, लेकिन अक्षत चाहता था कि मैं घर पर आऊं और सबके साथ में ब्रेकफास्ट करूं, बस तभी आ गई। लेकिन पहले आपने मना कर दिया था और मैं भी सरप्राइज हुआ जब आप अचानक सुबह ब्रेकफास्ट पर आ गई। आप एक कॉल कर देते तो हम और अच्छे से तैयारी करके रखते, आखिर आप बहुत टाइम बाद हमारे घर पर आई हैं, अक्षत ने बीच में कहा। आप दोबारा आइएगा, आज वेद सो रहे हैं तो आप उनसे भी नहीं मिल पाई, शिवांशा ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलते रहते हैं, सच कहूँ तो वेद से मिलने से ज्यादा आज मुझे तुम्हें देखना था, तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में जो भी सवाल थे वो अपने आप खत्म हो गए, मिहिका ने जवाब दिया। उसकी बातों का मतलब शिवांशा को समझ नहीं आया, फिर भी उसने हल्के से सिर हिला दिया था। ब्रेकफास्ट होने के बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए थे और जाने से पहले वंश ने शिवांशा से वेद को अपना मैसेज देने के लिए कहा था कि वो आराम से ऑफिस पहुंचे, वो वहां देख लेगा। सबके जाने के बाद शिवांशा फाइल के साथ ऊपर पहुंची, वेद अभी तक सोया हुआ था। शिवांशा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, अच्छा तो आप अपनी एक्स से मिलते रहते हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं, कहीं कल रात आप दोनों साथ तो नहीं थे? तभी वो सुबह उठते ही आपसे मिलने के लिए आ गई, शिवांशा ने फाइल को बेडसाइड पर रखा। उसे वेद से बात करनी थी लेकिन वो उसे नींद से जगा भी नहीं सकती थी। शिवांशा के पास इंतजार करने का और कोई रास्ता नहीं था,
वो वेद के जागने का इंतजार करने के लिए उसके पास बैठने के लिए बेड पर आने को हुई, लेकिन तभी शिवांशा के कदम वहीं पर रुक गए थे। इन्होंने मुझे सोफे पर ही सोने के लिए कहा है और इन्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं उनके पास में बेड पर आई तो? शिवांशा के मन से अचानक से आवाज आई और उसके कदम वेद के करीब जाने से हिचकिचाने लगे। शिवांशा अब वापस सोफे के पास आ गई थी। हालांकि वो यही चाहती थी कि वो वेद पर नजर बनाकर रखे, लेकिन सोफे से ये मुमकिन नहीं था। उसने उसे हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन अकेली वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मजबूरन शिवांशा सोफे पर आराम से बैठ गई थी और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ चुकी थी। वहीं दोपहर के एक बजे के करीब जब वेद की नींद टूटी और वो उठा तो उसकी नज़र शिवांशा पर गई, जो बैठे बैठे सो गई थी। वेद तुरंत उठा और उसके पास गया। उसने शिवांशा के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम ठीक से भी सो सकती हो, उठो शिवांशा। वेद के जागने पर भी शिवांशा नहीं उठी तो उसने खुद ही उसे ठीक से सुलाने का सोचा, लेकिन जब वेद ने शिवांशा को उठाया तब उसके कदम लड़खड़ा गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो आज उसका भी वजन नहीं उठा पा रहा था। वेद ने तुरंत शिवांशा को लेटा दिया। उसे अपने आसपास सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आने लगा। वेद कुछ समझ पाता उससे पहले वो चक्कर खाकर शिवांशा के ऊपर गिर गया था, जिससे शिवांशा की नींद भी तुरंत टूट गई थी। क्या लगता है वेद को क्या हुआ होगा? चलिए समीक्षा में बता दीजिएगा। और अब तो कंटिन्यू पाठ आ रहे हैं तो किसी तरह का आलस मत कीजिए और सारे पढ़कर समीक्षा करके जाइएगा। आज 100 पाठ भी पूरे हो गए हैं।